पृष्ठ संख्या 190, भाषा की राजनीति। भारत में लंबे समय से धर्म के साथ साथ भाषा की राजनीतिक भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। भारत पाकिस्तान के विभाजन की राजनीति धर्म और भाषा के सहारे अपनी मंजिल तक पहुंची। पाकिस्तान से बांग्लादेश की स्वतंत्रता का आंदोलन बांग्ला भाषा की स्वतंत्रता के आंदोलन के रूप में आरंभ हुआ। सन 1947 के बाद भारत में राजनीति के लिए धर्म और भाषा का लगातार प्रयोग हुआ है। आज भी भाषा, धर्म, संप्रदाय और जाति के माध्यम से अपनी राजनीतिक पहचान बनाने और लाभ उठाने की प्रवृत्ति बहुत प्रबल है। यह प्रवृत्ति घटने के बदले बढ़ती जा रही है, क्योंकि चुनाव की राजनीति इस प्रवृत्ति को पालती है और इसका दुरुपयोग करती है। देश के हर भाग में चुनाव की राजनीति में भाषा, धर्म और जाति का खुला खेल दिखाई देता है। किसी जनसमुदाय की अस्मिता की पहचान उसकी संस्कृति से होती है। भाषा संस्कृति का सर्वाधिक जीवंत और मूर्त रूप है। इसलिए भाषा को किसी जनसमुदाय की अस्मिता की पहचान का आधार बनाना गलत नहीं है। गलती तब होती है जब भाषा को धर्म से जोड़कर अस्मिता की पहचान और रक्षा की राजनीति को धर्म युद्ध बना दिया जाता है। तब राजनीति में विवेक पर भावावेश हावी हो जाता है। किसी जनसमुदाय की अस्मिता की पहचान में भाषाई आधार का महत्व समझना हो तो पाकिस्तान में भारत से गए मुसलमानों की स्थिति और समस्या पर एक नज़र डाल लेना जरूरी होगा। भारत से पाकिस्तान गए मुसलमानों को पाकिस्तान में मुजाहिर और बांग्लादेश में बिहारी कहा जाता है। मुजाहिर भारत के हिंदी उर्दू क्षेत्र, खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार से पाकिस्तान गए मुसलमान हैं। पाकिस्तान में मुजाहिरों के सामने एक समस्या है, अपनी ऐतिहासिक स्मृति और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखते हुए, अपनी स्वतंत्र पहचान कायम रखते हुए पाकिस्तान में अपने लिए जगह बनाना। यही कारण है कि मुजाहिर पाकिस्तान में उर्दू प्रदेश की मांग कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, मांग उर्दू प्रदेश की है, उर्दू सूबा की नहीं। उर्दू सूबा की जगह उर्दू प्रदेश की मांग का मतलब है पाकिस्तान में यूपी ब्रैकेट में उर्दू प्रदेश। पृष्ठ संख्या 191 बनाने की मांग। मुजाहिरों के लिए एक अलग प्रदेश की बात समझ आती है। उसकी भाषा उर्दू हो यह भी सही है, लेकिन उसका नाम उर्दू प्रदेश क्यों? मुजाहिर कहते हैं कि यूपी उर्दू प्रदेश की मांग के पीछे अतीत की स्मृतियों को सुरक्षित रखने की इच्छा है। उनके लिए स्मृति और आशा का मिलाजुला नाम है यूपी, जिससे उत्तर प्रदेश ही नहीं यूनाइटेड प्रॉविंस तक की स्मृतियाँ जुड़ी हैं। जब एक नाम के साथ इस तरह इतिहास जुड़ा हो और उस पर भविष्य की आशा टिकी हो, तब कौन कह सकता है कि नाम में क्या रखा है? सब जानते हैं कि भारत अनेक भाषाओं का देश है। 1971 की जनगणना के अनुसार भारत में चार भाषा परिवारों से जुड़ी 16,052 भाषाएं हैं, जिनमें से 210 भाषाएं बोलने वालों की संख्या बहुत कम है, लेकिन 20 से अधिक ऐसी भाषाएं हैं जिनके बोलने वालों की संख्या लाखों करोड़ों में है और उनकी सदियों पुरानी परंपराएं हैं। देशी भाषाओं की इस विविधता और समृद्धि के बावजूद आज भी एक विदेशी भाषा देश की वास्तविक संपर्क भाषा बनी हुई है। सन 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बाद भी भाषा और सीमा संबंधी झगड़े कम नहीं हुए हैं। अधिकांश सीमा विवाद मूलतः भाषा विवाद हैं। जब कोई भाषा विवाद दंगे का रूप ले लेता है, तब समस्या की गंभीरता समझ में आती है। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच भाषा और सीमा का झगड़ा उठा था। उसे सुलझाने की कोशिश चल ही रही थी कि गोवा में मराठी और कोंकणी के बीच झगड़ा बढ़ा, जिसमें 8 व्यक्ति मारे गए। असम समस्या के केंद्र में भाषा थी, तो पंजाब समस्या भी भाषा की राजनीति से जुड़ी हुई है। गोरखालैंड के आंदोलन की एक मांग नेपाली भाषा की स्वीकृति भी है। ये समस्याएं गंभीर हैं और जटिल भी। भाषा के साथ जनता के भावात्मक लगाव के कारण इन समस्याओं को समझने और हल करने में सावधानी और धैर्य जरूरी है। इन समस्याओं की गंभीरता और जटिलता देखकर कुछ नेताओं के हाथ पांव फूल जाते हैं। वे कहते हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ही गलत कदम था। जादू की छड़ी घुमाकर हर समस्या का हल करने के आदी अधीर लोग इसी तरह भूसा से अन्न अलगाने की झंझट से बचने के लिए दोनों को घूर पर फेंक देते हैं। भाषा की राजनीति का सबसे खतरनाक पहलू उसकी सांप्रदायिकता से साठगांठ है। यह प्रवृत्ति स्वाधीनता आंदोलन के काल में भी थी, लेकिन स्वाधीनता के बाद भाषा की राजनीति का सांप्रदायिक रंग अधिक गाढ़ा हुआ है। पंजाब में यह राजनीति भाषा के साथ संप्रदाय, धर्म और राज्य की सीमा को मिलाकर विकराल बन गई थी। गोवा का मराठी कोंकणी विवाद भी सांप्रदायिकता की लपेट में है। हिंदी देश में सांप्रदायिक राजनीति बार बार हिंदी उर्दू विवाद में सांप्रदायिकता का जहर घोलकर अपना उल्लू सीधा करती रही है। आश्चर्य की बात तो यह है कि पृष्ठ संख्या 192, जो लोग राजनीति और साहित्य में सांप्रदायिकता का विरोध करते हैं, वह भी भाषा पर सोचते, बोलते और लिखते समय सांप्रदायिक वातावरण के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाते। पिछले 40 वर्षों में सांप्रदायिक राजनीति ने भाषा का जो दुरुपयोग किया है, उसका असर चिंतन और लेखन में भी दिखाई पड़ता है। भाषा की यह राजनीति साहित्य को भी प्रभावित कर रही है। समकालीन हिंदी उर्दू साहित्य की दुनिया में झांकिए तो यहाँ भी भाषा की सांप्रदायिक राजनीति की हवा बहती मिलेगी। आज़ादी के बाद के वर्षों में हिंदी उर्दू के बीच भाषा और साहित्य दोनों स्तरों पर एकता घटी है, दूरी बढ़ी है। आज हिंदी और उर्दू के लेखक जितना यूरोप के लेखकों से परिचित हैं, उतना एक दूसरे से नहीं। हिंदी उर्दू के लेखन और लेखकों के बीच संवाद बढ़ने के बदले भाषा विवाद बढ़ा है, इसलिए रचनात्मक आदान प्रदान कम हुआ है। बोलचाल की हिंदी और उर्दू में उतना अजनबीपन नहीं है जितना लेखन की भाषाओं के बीच। भारतेंदु युग और प्रगतिशील आंदोलन के समय की हिंदी उर्दू की आत्मीयता अब इतिहास की वस्तु बन गई है। पिछले कुछ सालों में भाषा की राजनीति से क्षेत्रीयता भी आ जुड़ी है। केंद्रीय सरकार की गलत नीति और राज्यों के साथ उसके बेतुके व्यवहार के कारण क्षेत्रीय आकांक्षाओं का दमन हुआ है, जिसकी प्रतिक्रिया में क्षेत्रीयता की भावना बढ़ी है। फलतः केंद्र का विरोध भी बढ़ा है। अब कहीं कहीं केंद्र का विरोध हिंदी विरोध के रूप में प्रकट हो रहा है। कारण यह है कि आजकल हिंदी क्षेत्र ही केंद्र की सत्ता का आधार बना हुआ है, इसलिए कभी कभी अहिंदी भाषी हिंदी और केंद्रीय सत्ता को एक मान लेते हैं। ऐसी स्थिति में केंद्र के विरोध की राजनीति हिंदी विरोधी राजनीति बन जाती है। भाषा की राजनीति का एक मुद्दा हिंदी की स्थिति भी है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी ने आंदोलन की संपर्क भाषा का काम किया था। स्वाधीनता के बाद हिंदी को राष्ट्र की संपर्क भाषा मानना स्वाधीनता आंदोलन के दौर की उसकी भूमिका की स्वाभाविक स्वीकृति थी, लेकिन बाद के दिनों में भाषा की राजनीति ने नया मोड़ लिया। हिंदी को संपर्क भाषा बनाने का विरोध शुरू हुआ। हिंदी को संपर्क भाषा बनाने के लिए भले ही कोई आंदोलन ना हुआ हो, लेकिन उसको संपर्क भाषा बनने से रोकने के लिए लगातार आंदोलन होते आ रहे हैं। विशेष रूप से तमिलनाडु में डीएमके की राजनीति हिंदी विरोध पर टिकी हुई है। डीएमके का 1965 से अब तक का इतिहास हिंदी विरोध की राजनीति का इतिहास रहा है, और उसका भविष्य भी इसी पर निर्भर है। भाषा की राजनीति का यह उग्र रूप है। असल में भाषा की राजनीति जहाँ कहीं भी हो, चाहे तमिलनाडु में या हिंदी पृष्ठ संख्या 193 क्षेत्र में हिंदी विरोध के रूप में हो या हिंदी उर्दू विवाद के रूप में, उसका उद्देश्य लगभग समान है। भाषा की राजनीति का उद्देश्य है शोषण और दमन के विरुद्ध जनता के संघर्ष की राजनीति को भटकाना। भाषा के नाम पर जनभावना को भड़काकर शोषक सत्ता के विरुद्ध पनपे जनता के गुस्से को दूसरी ओर मोड़ना। भाषा की राजनीति में शासक वर्ग की दिलचस्पी है, क्योंकि उसमें उसका हित है। आम जनता भाषा की राजनीति का शिकार बनती है। करुणानिधि जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, तब जन आंदोलनों को कठोरता से कुचलते समय उनका तमिल प्रेम कहाँ चला गया था? आंध्र प्रदेश के एनटी रामाराव तेलुगु भाषा और संस्कृति से प्रेम की दुहाई देकर ही सत्ता में आए। आंध्र में जन आंदोलनों का दमन करने के निरंकुश पुलिस राज कायम किए हुए थे। हिंदी भाषी जनता के आंदोलनों को कुचलने के ये तमिल भाषी पुलिस बुलाई जाती है और तेलुगु भाषियों के आंदोलन को दबाने के लिए हिंदी भाषी पुलिस। वास्तव में शासक वर्ग का भाषा प्रेम तो राजनीति का एक बहाना है। भाषा की इस राजनीति के झूठे और सच की पहचान धूमिल की एक कविता में है। उस कविता में इस राजनीति के वास्तविक उद्देश्य और असली रूप की समझ है और इस राजनीति के पीछे छिपे चेहरों का चित्रण भी। कविता है भाषा की रात। सन 1965 में तमिलनाडु में हिंदी विरोधी भयंकर दंगे हुए थे, उसकी प्रतिक्रिया उत्तर में भी हुई। भाषा की रात उसी संदर्भ से उपजी कविता है। कविता आज भी उस संदर्भ का साक्षात्कार कराती है। अर्थ और अभिप्राय के स्तर पर कविता आज भी पहले की तरह ही सार्थक है, बल्कि आज पहले से अधिक सार्थक लगती है, क्योंकि भाषा की राजनीति आज पहले से अधिक भयावह हुई है। कविता में ऐसी क्षमता है कि वह पहले से अधिक जटिल और घातक आज की भाषा की राजनीति के अभिप्राय से पाठकों को सावधान कर सके। यह भाषा की राजनीति की जटिलता का अर्थ बताकर, भाषा की राजनीति के बाहरी और भीतरी रूप का भेद खोलकर, उसके आतंक से पाठकों को मुक्त करने वाली कविता है। यह कविता एक ओर भाषा की भ्रामक राजनीति का प्रतिकार है, तो दूसरी ओर अपनी रचनाशीलता में भाषा की मानवीय अर्थवत्ता का प्रमाण भी है। भाषा दिलों को जोड़ती है, इसी प्रक्रिया में वह पलती और बढ़ती है, लेकिन भाषा की राजनीति उसे नफरत और दहशत का साधन बना देती है। धूमिल की कविता में भाषा की राजनीति से पैदा नफरत और दहशत की स्थितियों के अनेक चित्र हैं। एक चित्र यह है, नारों के पीछे चीजों का नाटक बनाती हुई भीड़ में किसी बेशऊर आदमी का बैरंग पुतला चिटक चिटक जल रहा है। उसकी राख फुटपाथ पर पड़े भिखारी के पृष्ठ संख्या 194 खाली कटोरे में गिर रही है। धुएं से ढके हुए आसमान के नीचे लगता है कि हर चीज झूठ है। आदमी, देश, आजादी और प्यार सिर्फ नफरत सही है। भाषा की राजनीति आतंक, भय, संदेह और नफरत का ऐसा वातावरण बनाती है कि इन्वर्टेड कामा कल तक मुंह में जीभ डालकर बोलने वाला प्यारा पड़ोसी आज देशी दांतों की दोस्ती से डर रहा है। इन्वर्टेड कामा बंद। भाषा की राजनीति भाषा की रात रचती है। नंगी और ठंडी और काली, तीन मुंह वाली यह भाषा की रात। इस रात के अंधेरे में शिकारी अपना खेल खेलते हैं। भाषा की राजनीति के खिलाड़ी जनता की भावनाओं से खेलते हैं, उसकी ऊब, बेचैनी और गुस्से का गलत इस्तेमाल करते हैं। धूमिल ने ठीक ही लिखा है, तुम्हारी ऊब का चेहरा पहनकर हत्यारों ने फिर उसी जुबान में बोलना शुरू किया है जिसमें तुम्हारे बचपन की लोरियों की गंध है और जो तुम्हें बेहद पसंद है। इस भाषा की राजनीति के पीछे सक्रिय शक्तियों और भाषा की रात में चमकते चेहरों को कवि पहचानता है। इनसे वह जनता को सावधान करता है और ओ देखो, वह निहाल धुंधियल कैसा मगन है, हुचुर हुचुर हंस रहा है। भाड़े की भीड़ के अंधे जुनून पर उसे कतई एतराज नहीं है। वो भाषावार हमलों से हलकान, मेरे भाई, क्या तुम्हें अब भी उसी का भरोसा है जिसके अधिकार में हमारी लिट्टी है, चावल है, इडली है, डोसा है? कवि जानता है कि भाषा की राजनीति देश की एकता खंडित करती है। वह उत्तर दक्षिण का भेद पैदा करती है। वह कभी प्रांतीयता का चेहरा लगाती है, कभी भाषा प्रेम के नाम पर लोगों को भड़काती है। वह मनुष्यों और भाषाओं के बीच दरार पैदा करती है। कवि को यह भी मालूम है कि भाषा की राजनीति शासक वर्ग के विरुद्ध जनता की आपसी एकता, किसानों मजदूरों के बीच की एकता को खंडित करती है। यही शासक वर्ग चाहता है। भूखी जनता के गुस्से से अपने को बचाने के लिए ही उसने बहस के लिए भूख की जगह भाषा को रख दिया है। शासक वर्ग जनता की एकता से डरता है, उस एकता की शक्ति और संभावना से डरता है, इसलिए भाषा की भ्रामक राजनीति का जाल फैलाता है। कवि शासक वर्ग की इस चाल को पहचानते हुए जनता के बीच एकता की जरूरत की ओर संकेत करता है। हाय, जो असली कसाई है उसकी निगाह में तुम्हारा यह तमिल दुख मेरी इस भोजपुरी पीड़ा का भाई है। धूमिल अपनी कविताओं में तल्ख भाषा और चुस्त मुहावरों में कटु सत्य कहने पृष्ठ संख्या 195 के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका आक्रामक व्यंग्य उनके निष्कपट बयानों को और अधिक मारक बना देता है। सार्थक राजनीतिक कविता के लिए यह सब जरूरी है। कुछ लोग धूमिल की चौकस काव्य भाषा पर केवल चौंकते हैं, जबकि उनकी कविता चौंकने की नहीं सोचने की मांग करती है। धूमिल की इस कविता में कहीं भी दुविधा और दुराव नहीं, न दृष्टि में, न अभिव्यक्ति में, न फरेबी राजनीति की चालों की पहचान में, न जनता की एकता के आह्वान में। जहाँ कविता आह्वान की ओर झुकती है, वहाँ दृष्टि की दृढ़ता, भावना का आवेग और भाषा की धार देखने लायक है। वो देश के पोर पोर में दुखते हुए गूंगे जुनून, क्रोधी की अकेली मुद्रा में उफनते हुए सात्विक खून, आबाहरा, मैं एक अदना कवि तेरी भाषा का मुहताज, मुझे अपनी बोली में शरीक कर, चीख अपने होने की पीड़ा से चीख, लीक तोड़ अब और तरह मत दे, साफ साफ कह दे, भूख जो कल तक रोशनी थी आज नींद से पहले का जागरण है। सुविधा परस्त लोगों के दिमाग में थुहर की तरह उगी हुई राजनीति शब्दों से बाहर का व्याकरण है। शासक वर्ग भाषा का राजनीतिक उपयोग ही नहीं करता, वह अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी भाषा व्यवस्था का भी निर्माण करता है जो उसके हितों, उद्देश्यों और आकांक्षाओं को पालने पोसने वाली हो। भाषा के इस विशिष्ट व्यवहार में शासक वर्ग की अस्मिता और विचारधारा व्यक्त होती है। शासक वर्ग के राजनीतिक हित और उसकी भाषा व्यवस्था के बीच संबंध हमेशा एक सा नहीं रहता। वह कहीं स्पष्ट होता है, कहीं गूढ़, कहीं सहज होता है, कहीं जटिल। आज के जमाने में रेडियो, टेलीविजन, अखबार, भाषण और लेखन आदि भाषा के विचारधारात्मक उपयोग के मुख्य माध्यम हैं। शासक वर्ग जिस भाषा व्यवस्था का निर्माण करता है, उसमें शब्द के अर्थ को भ्रष्ट करने और बदलने की प्रक्रिया चलती है। हमारे यहाँ समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, आज़ादी, जनतंत्र आदि इस प्रक्रिया के शिकार हुए हैं। जनता को भटकाने के लिए शासक वर्ग को इन शब्दों की ज़रूरत है। वह इन शब्दों का प्रयोग करता है, लेकिन इनके इतिहास सम्मत अर्थ को बदलकर, उस अर्थ के पीछे की धारणा को छोड़कर और उस धारणा के आधारभूत यथार्थ को झुठलाकर। इस तरह शासक वर्ग शब्द के इतिहास अर्जित अर्थ को बिगाड़कर शब्द छल के सहारे जनता को धोखा देता है। हिंदी के जिन कवियों ने शासक वर्ग की भाषा के छद्म को पहचाना है, उनमें धूमिल का विशेष महत्व है। धूमिल ने शासक वर्ग की सेवा करने वाली संस्थाओं का वास्तविक चरित्र खोलकर पाठकों के सामने रख दिया है। उन्होंने शासकीय भाषा का भेद खोलकर जनता को आगाह भी किया है। धूमिल ने शासक वर्ग की भाषा व्यवस्था के उद्देश्य और रहस्य की ओर संकेत करते हुए लिखा है, उन्हें तुम्हारी भूख पर भरोसा था, सबसे पहले उन्होंने एक भाषा तैयार की, जो पृष्ठ संख्या 196 तुम्हें न्यायालय से लेकर नींद से पहले की प्रार्थना तक गलत रास्तों पर डालती थी। वह सच्चा पृथ्वी पुत्र है, वह संसार का अन्नदाता है, मगर तुम्हारे लिए कहा गया हर वाक्य एक धोखा है जो तुम्हें दलदल की ओर ले जाता है। राजनीति की भाषा में फैले धुएं और कुहासे को तेज ऐतिहासिक दृष्टि से भेद कर उसमें छिपी सच्चाई को सामने लाने की कला में धूमिल बेजोड़ हैं। उनकी कविता में शासक वर्ग की भाषा की आलोचना उसकी विचारधारा और राजनीति की भी आलोचना है। ऐसी आलोचना का एक उदाहरण पेश है। पिछले 40 वर्षों से इस देश के शासक वर्ग की राजनीति भाषा का सबसे उपयोगी और चालू शब्द समाजवाद है। इस सरकारी समाजवाद की हकीकत बताते हुए धूमिल ने लिखा है, समाजवाद उनकी जुबान पर अपनी सुरक्षा का एक आधुनिक मुहावरा है, मगर मैं जानता हूँ कि मेरे देश का समाजवाद मालगोदाम में लटकी हुई उन बाल्टियों की तरह है जिन पर आग लिखा है और उनमें बालू और पानी भरा है। विडंबना की यह पहचान धूमिल की कविता की जान है।